आस्तिक की पकड़ इतनी तेज थी कि अरुणिमा की कराह निकल गई। अरुणिमा की आंखों से आंसू आने लगे थे कि तभी उन्हें अमृता ताई की आवाज़ आई, जिसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, अरुणिमा यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो। अमृता ताई की आवाज़ पर आस्तिक ने अरुणिमा की कमर को छोड़ दिया और अरुणिमा जल्दी से वहां से अमृता ताई के पास चली गई। अमृता ताई ने अरुणिमा से कहा, बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मेरे कमरे तक ले चलोगी? अरुणिमा जल्दी से हाँ में सर हिलाती है और अमृता ताई को सोफे से खड़ा करने में मदद करती है। आस्तिक उनके पास आता है और कहता है, मुझे कुछ समय के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा है, एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है, पर मैं डिनर से पहले ही वापस आ जाऊंगा। अमृता ताई ने हाँ में सर हिलाया और अरुणिमा धीरे धीरे अमृता ताई को लेकर उनके कमरे की तरफ जाने लगी। अपने कमरे में पहुंचकर अमृता ताई ने जब वो कमरा देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अरुणिमा को देखकर कहा, मेरा कमरा तुमने तैयार किया है? अरुणिमा ने एक मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाया। अमृता ताई ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे वाह, मतलब तुम सिर्फ संस्कारी और खूबसूरत ही नहीं हो बल्कि होनहार भी हो। सच में अरुणिमा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे आस्तिक की जिंदगी में आई हो। मेरा आस्तिक बहुत नसीब वाला है जो उसे तुम जैसी जीवनसाथी मिली है। अरुणिमा हैरानी से अमृता ताई को देखती हैं और कहती हैं, लेकिन यहाँ तो सब कहते हैं कि मुझे एहसानमंद होना चाहिए कि राजा साहब ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में चुना है। अरुणिमा की ये कहते ही अमृता ताई हंसने लगती हैं और उन्हें हंसता देखकर अरुणिमा हैरान रह जाती है। अमृता ताई हंसते हुए सोफे पर बैठती हैं और कहती हैं, ये कैसी बातें कर रही हो, कौन कहता है ये प्रणाली ना? मुझे पता है ये सारे शब्द इस लड़की के हो सकते हैं, पर अरुणिमा तुम प्रणाली के शब्दों को दिल से मत लगाया करो। वो लड़की बचपन से ही ऐसी है, मैंने उसे पाला है, मुझसे बेहतर उसे और कौन ही जानता है। और हाँ, जहाँ तक बात रही आस्तिक और तुम्हारे साथ होने की, तो आस्तिक को पत्नी के रूप में कोई भी मिल सकती थी। उसके पास लड़कियों की कमी नहीं थी, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े राजघराने के रिश्ते आए आस्तिक के लिए, पर फिर भी उसने जब शादी की तो तुमसे की, क्योंकि तुम उसका भाग्य हो। पत्नी पति का भाग्य होती है और पत्नी का वैभव भी पति की कामयाबी का कारण बनता है। तुम्हें पता है, मुझे पहले ऐसा लगता था कि अगर आस्तिक किसी लड़की से शादी करेगा तो मैं उसे बस इस राज्य की रानी के रूप में देखूंगी, लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा ना, तो मेरी ये सोच गलत साबित हो गई, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ की रानी के रूप में पहचान नहीं पाई। तुम तो मुझे सिर्फ आस्तिक की पत्नी के रूप में दिखाई दे रही हो, वरना कोई और लड़की होती तो इस समय सोने से लदी होती। उसे तो सात सिंगार से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो वो घर गृहस्थी पर क्या ध्यान देती। पर तुम्हें देखो, सादगी में भी खूबसूरत हो। ऐसा कहते हुए अमृता ताई ने अरुणिमा का हाथ पकड़ लिया था। तभी उन्होंने अरुणिमा के कलाई पर जख्म के निशान देखे और ये देखकर वो चौंक गई। उन्होंने अरुणिमा को देखकर कहा, ये क्या हुआ अरुणिमा, तुम्हारे हाथ पर ये जख्म कैसा, तुम्हें चोट लगी है क्या? अरुणिमा ने जल्दी से अपने हाथ खींच लिए और अपने हाथ को आंचल में छुपाते हुए कहने लगी, अरे नहीं अमृता ताई, ये तो बस खाना बनाते हुए लग गया था, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी चोट है, लगती रहती है। अरुणिमा सोफे से खड़े होते हुए कहती है, अच्छा अब आप आराम कीजिए, सफर से आई हैं, थक गई होंगी, मैं तब तक जल्दी से जाकर आपके लिए कुछ खाने को भिजवा देती हूँ, और मुझे रात का भी तो खाना बनाना है। अमृता ताई हैरानी से कहती हैं, रात का खाना तुम बनाओगी? अरुणिमा को आस्तिक की धमकी अच्छे से याद थी, इसीलिए उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी वो इन्हें मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, इसीलिए जब इनके लिए बनाती हूँ तो सबके लिए बना देती हूँ। अमृता ताई की मुस्कान और गहरी हो गई और उन्होंने कहा, देखो कितनी अच्छी बात है, घर में इतने सारे नौकर के होते हुए भी मुझे मेरी बहू के हाथ का खाना नसीब होगा। अरुणिमा वहां से चली जाती है और अमृता ताई अपना सामान समेटने लगती है और अपने मन में ये सोचने लगती है कि अरुणिमा कितनी अच्छी लड़की है, घर संभालती है, आस्तिक को संभालती है, और वो एक सर्वगुण संपन्न महिला के रूप में अरुणिमा को देख रही थी। पर उन्हें क्या पता था कि ये सब करना अरुणिमा की मर्जी नहीं थी, बल्कि ये तो आस्तिक के ऑर्डर हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉयल गेस्ट हाउस में पृथ्वी की गाड़ी जैसे ही गेस्ट हाउस के सामने आकर रुकती है, अंदर से एक तेज धमाके की आवाज आती है। पृथ्वी हैरान रह जाता है, वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और गेस्ट हाउस के अंदर जाता है। अंदर जाकर उसकी आंखें और हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर सारे सर्वेंट और सेवक एक तरफ डर के मारे छुपे हुए थे। पृथ्वी देखता है गेस्ट रूम से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। सर्वेंट जब पृथ्वी को वहां देखते हैं तो कहते हैं, छोटे साहब अंदर मत जाना। पृथ्वी हैरानी से उन्हें देखकर कहता है, आप लोग ऐसे छुप क्यों रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी वो लड़की जिसे पृथ्वी ने कल रात जानवी की देखभाल के लिए रखा था, वो जल्दी से पर्दे के पीछे से निकल कर आती है और कहती है, छोटे मालिक ये कौन सी बला लेकर आए हैं आप, जब से जागी है तब से तोड़फोड़ मचा रखा है। पृथ्वी उसकी बात सुनकर और हैरान रह जाता है। तभी अंदर से एक जोरदार कांच के टूटने की आवाज आती है। वो लड़की अपना सर पीटते हुए कहती है, नया ड्रेसिंग टेबल था, तोड़ दिया। पृथ्वी एक गहरी सांस छोड़ता है और गेस्ट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। पर तभी सारे सेवक उसे रोकते हुए कहते हैं, छोटे मालिक अंदर मत जाइए मत। छोटे मालिक, वो लड़की पागल है, कुछ भी उठकर मार देती है। मत जाइए छोटे मालिक, आपको चोट लग जाएगी। पर पृथ्वी सारी बातों को इग्नोर करता हुआ धीरे धीरे गेस्ट रूम तक पहुंचता है। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। पृथ्वी धीरे से गेस्ट रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। पृथ्वी देखता है कल तक एंटीक चीजों से सजा हुआ ये गेस्ट रूम इस समय किसी कबाड़ से काम नहीं लग रहा है। सारी चीज टूट फूट कर फर्श पर बिखरी हुई है। पृथ्वी धीरे कदमों से उन टूटे हुए हिस्सों को अपने पैरों से साइड करता हुआ अंदर की तरफ जाता है। पर पृथ्वी की आंख छोटी हो जाती है। यहाँ पर कोई भी नहीं था, गेस्ट रूम पूरा खाली था। तभी पृथ्वी के कान बजते हैं और पृथ्वी चौकन्ना हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जानवी पीछे है। और तभी पृथ्वी अचानक से पलटकर जानवी का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि जानवी ने एक लोहे का गुलदस्ता पृथ्वी को करने के लिए उठा रखा था। पृथ्वी जानवी का हाथ पकड़कर उसे धकेलता हुआ दीवार पर ले जाता है। और तभी पृथ्वी और जानवी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पृथ्वी की आंखों में कुछ भी नहीं था, पर जानवी की आंखें अंगारों जैसी लाल हो रखी थी।